ओम शांति। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। कहेंगे ये तो कभी सुना नहीं। यहाँ आए हैं नए स्थान पर तो कुछ नया तो सीख के जाएंगे ना। यहाँ आपकी मॉर्निंग कैसी हो रही है? डायमंड मॉर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? वर्थ डायमंड बन रहे हो तो ये कितना बड़ा भाग्य है। एक हाथ आगे लाओ, पीछे लेके जाओ, शाबाश दे लो अपने आप को कि एटलीस्ट कितने लोग ट्राई करते हैं यहाँ अबू में आने का, लेकिन उनका प्रोग्राम नहीं बनता है। और आप सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारी बहन ने हिम्मत रखी और आप सबका ग्रुप लेकर के यहाँ पर आई। तो एक ताली दीदी के लिए भी। यहाँ हम आए हैं, दो दिन से बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो कुछ बातें तो हम सुनने से अपने अंदर में एक्सेप्ट करते हैं और कुछ बातें हम देखने से भी सीखते हैं। और कई बार हम लोग किसी का व्यवहार देखते हैं यहाँ पर तो उससे भी बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। पर विशेष रूप से जो हमारा फोकस है यहाँ आने का वो ये है कि हम राज्यों का मेडिटेशन सीखें, क्योंकि मेडिटेशन की हमने बहुत महिमा सुनी है। और अब तो ये दुनिया के अंदर एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, इजंट इट? सब कोई कहते हैं हमें तो मेडिटेशन सीखना है। पहले लोग होता था बहुत सी बातें और भगवान के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन अब लोगों का जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो किस में है? मेडिटेशन, जिससे मुझे पर्सनल बेनिफिट हो। आप भी किस लिए आए यहाँ पर? सभी पर्सनल बेनिफिट के लिए आए हैं ना, क्योंकि अभी सब लोग हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दो दिन में जो आपके चैप्टर्स हुए, मैं समझती हूँ वो सेल्फ से रिलेटेड और सेकंड गॉड से रिलेटेड, दोनों चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अपने को भी जानना और भगवान को भी जानना, क्योंकि कनेक्शन हमारा तभी होता है। आप मुझे जानेंगे, मैं आपको जानूंगी, और जितना मैं आपको जानती चली जाऊंगी, आप मुझे जानते चले जाएंगे, उतना ही क्या होगा, हमारी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, इजंट इट? यही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब हम आए तो आप लोगों ने क्या बात नोट की दो दिन के चैप्टर्स में? दो विषय जो हमारे हुए उसमें, एक तो हम लोग पहले पूछे कि भाई कौन, आप कौन है, तो फटाफट हम क्या बता देते हैं, मेरा ये नाम है, हम यहाँ से आए हैं, हम ये करते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर पहले जो इमेज बनता था वो किसका बनता था? शरीर का बनता था, इजंट इट? फिजिकल इंट्रोडक्शन का बनता था। लेकिन अब यहाँ आकर के हमें बिल्कुल 180 डिग्री टर्न कर दिया गया कि आप ये तो हैं ही हैं, पर ये आपका एक्वायर्ड है, ये आपका एक्वायर्ड है, आपने यहाँ आकर के इस चीज को पाया है। सपोज करो आपका नाम मीरा है, पिछले जन्म में आपका नाम मीरा नहीं था, आप इस समय इस जन्म में आप डॉक्टर हैं। पिछले जन्म में आप डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं हो सकता है। तो ये हमने एक्वायर किया, यहाँ आए उसको हमने एक्वायर किया। अब जो चीज मैंने यहाँ आके एक्वायर की वो मेरे से छूट भी सकती है, छूट सकती है कि नहीं? जैसे मानो आप यहाँ आए, आपने यहाँ का जो भी एनवायरमेंट है उसको एडॉप्ट किया, लेकिन उसके बाद तीन दिन के बाद क्या होगा, ये रूम भी आपका छूट जाएगा, यहाँ का जो संघ है ये भी छूट जाएगा, इजंट इट? ये परमानेंट नहीं है। और आप यदि रोने लगे, कहने लगे कि नहीं नहीं हमारा नहीं मन हो रहा यहाँ से जाने का, हम तो यहीं रहना चाहते हैं, तो बहनें क्या कहती हैं? नहीं नहीं प्लीज, जहाँ से आए हो वहीं जाओ। क्यों? क्योंकि वही आपका स्थान है, जहाँ जाकर के जो आपने यहाँ पर सीखा है वो दूसरों को सिखाना है। तो इसलिए एक शिफ्ट हमारे अंदर में यहाँ आने से आई वो ये था कि जो एक्वायर्ड है वो मेरा नहीं है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो प्रोफाइल है, चाहे वो मेरा नाम है, चाहे मेरी कास्ट है, चाहे मेरी स्किन ब्यूटी है, कोई भी चीज है, ये सब क्या है, मैंने यहाँ इस जन्म में एक्वायर किया है, लिया है, लेकिन अब ये मेरा नहीं है, मैं कौन हूँ? आत्मा। अब आप कहेंगे आत्मा तो हमने तब तक सुना था जब तक हम डेड बॉडी की बात होती थी, तो कहते आत्मा निकल गई, अर्थ थी, ये सब चीजें तो तब तक थी, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि आप हो ही आत्मा। कितनी बड़ी बात चेंज हो गई। तो अब इस चीज को हमें प्रैक्टिकल में लाना है, तो प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते अब कोई मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछता है कि आप कौन हो, तो क्या बताओगे? आत्मा बोलोगे? क्या करोगे? कहेगा इसको क्या हो गया, ये भी आत्मा कहते हैं, ये भी आत्मा कहते हैं, ये भी आत्मा। दैट इज नॉट द राइट वे। जब आपसे कोई पूछेगा तो इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही दोगे कि मैं सो एंड सो हूं, लेकिन अंदर में इमेज क्या बनना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं। समझ आई ये बात? अंदर में मेरे इमेज क्या बनना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। बहन ने बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई ना कि वो बाहर भागे मैं भीतर भागा। तो कोई भी बात करते हुए, कर्म करते हुए, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को कैसे बनाएंगे आत्माभिमानी स्थिति को, कि अंदर में ये याद रखेंगे कि मैं कौन, मैं एक आत्मा। बाहर में बोला मैं मीरा, अंदर में क्या आया, आता। अभी बोलना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो जब किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसमें आपके व्यवहार में आत्मीयता प्रकट होगी, आपके व्यवहार में आत्मीयता प्रकट होगी, जिससे वो व्यक्ति हमारे और नजदीक आएगा। समझ आई ये बात? इसी तरह से दूसरी शिफ्ट हमारे यहाँ पर आई जीवन में, जो सेकंड लेसन हमें मिला कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उसके बारे में हमें परिचय मिला। अभी तक तो हम समझते आए थे कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, गुरु नानक भगवान है, बुद्ध भगवान है, लेकिन अब हमें क्लैरिटी यहाँ पर क्या मिली कि ये सब धर्म पिता हैं, ये सब देव आत्मा हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा कौन है? शिव बाबा कौन? कौन शिव बाबा? शिव बाबा कहते हुए भी लोगों का इमेज बन जाता है शंकर का, शंकर और शिव दोनों का। शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जिसको सभी ने माना है। तो सेकंड शिफ्ट हमारे लाइफ में यहाँ आने से एक ये बहुत बड़ी आई कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा, और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बहुत बड़ी शिफ्ट है ये। अब इस शिफ्ट को हमें कायम रखना है। कायम कैसे रखें? अब देखो, हम लोग सभी भगवान को याद तो करते हैं, कोई किस रूप में, कोई मंत्र का जाप करता है, कोई ओम की ध्वनि लगाता है, कोई पूजा करता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। क्रिश्चियनिटी है तो वहां जाके वो सैटरडे संडे को प्रेयर करते हैं, इज़न्ट इट? सब लोग हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन करते करते हम लोग जनरली क्या कहते हैं, मेरा मन भगवान की याद में टिकता नहीं है। बैठेंगे याद करने, लेकिन मन जो है कहीं और भाग जाता है। हाथों से हम लोग क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और डोल रहा होता है। तो राजयोग हमारा ध्यान इस ओर खिंचवाता है कि भगवान की याद में हमें अपना ध्यान, उसके लिए हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है, हमें मन पर ध्यान देना है। अभी तक हम हर एक चीज पर ध्यान देते आए, अब यहाँ पे आए तो हमने ड्रेस पे ध्यान दिया कि हमें क्या ड्रेसेस लेके जाने हैं, नए ड्रेसेस भी बनवाए होंगे। अच्छा, हमें ट्रैवलिंग करनी है तो हमें क्या भोजन लेकर के जाना है, वहाँ रहना है, ठंडी भी हो सकती है, टेम्परेचर क्लाइमेट भी पता किया होगा। हर चीज पे हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया? पर हमने सारे जिंदगी में अभी तक ध्यान देते देते हम लोगों ने एक्सटर्नल पे ध्यान दिया। ये सब एक्सटर्नल है, है ना, लेकिन इंटरनल पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो राजयोग मेडिटेशन हमारा जो ध्यान है वो इंटरनल पर खिंचवाता है कि देखो अपने भीतर में, मेरे भीतर में क्या चल रहा है। हम कहते हैं भीतर में कैसे जाएं, भीतर में जाने में डर लगता है, भीतर में तो अंधेरा है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि मेरे को सही पहचान नहीं है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन सबसे हाईएस्ट मेडिटेशन है जो हमें सब बातों की क्लैरिटी देता है, नॉलेज बेस्ड है। कई लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर आए, यहाँ ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। ज्ञान इसीलिए सुनाया जाता है, अगर आपको सही परिचय नहीं है, सही रास्ता नहीं मालूम है, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ भी आने के लिए आपको सही परिचय मालूम होना जरूरी था ना, कि हमें कहाँ जाना है। केवल ये इंट्रोडक्शन काफी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाना है, लेकिन हमें ये पता था कि किस कॉम्प्लेक्स में जाना है, isn't it? ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जैसे ही हमें किसी चीज की क्लैरिटी हो जाती है, तो क्लैरिटी से हमें जो कार्य करना होता है वो सहज हो जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा, बच्चे तू कर्म भी कर और मुझे भी याद कर। कर्म को तो हम नहीं छोड़ सकते। लोग इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं कि कर्म को छोड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि डे टू डे लाइफ के अंदर रहते हुए हम अपने जीवन को ऊंच कैसे बनाएं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। तभी देखो देवी देवताओं को भी कैसे दिखाया जाता है, इकट्ठा दिखाते हैं ना, कमल के नीचे दिखाते हैं। उसका ये मतलब होता है कि दुनिया में रहते हुए, व्यवहार में आते हुए, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह चलना है, न्यारे और प्यारे होकर के चलना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए राजयोग का जो हाईएस्ट मेडिटेशन है, इसमें सारे योग समाये हुए हैं। जैसे भक्ति योग, प्यार है तो हम भगवान को याद कर सकते हैं। मेरा आपके साथ जितना डीप कनेक्शन होगा, उतना ही हमारी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। तो इस योग के अंदर भगवान के साथ प्यार भी समाया है। क्यों? क्योंकि बिना प्यार के उसको याद हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें भक्ति योग भी समाया है, ज्ञान योग भी समाया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के आधार पर है, समझ के आधार पर है। ज्ञान का मतलब होता है समझ, और वेयर देयर इज अंडरस्टैंडिंग, वहां पे सब चीजों में क्लैरिटी हो जाती है। इसीलिए दुनिया में लोगों ने कहा है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। नॉलेज हमें, ज्ञान हमें शक्ति देती है, परिवर्तन करने की शक्ति तभी आती है। घर में हम कोई माइक्रोवेव सपोज करो ले आते हैं, और अगर हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि इसके द्वारा आप क्या क्या कुकिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, तो हमें उसको हैंडल करना सहज हो जाता है। तो जीवन को भी हैंडल करना तभी सहज होता है जितना हमें इनके बारे में ज्ञान होता है। इसी तरह इसमें बुद्धि योग भी समाया है, थ्रू इंटेलेक्ट याद करना है। कुछ भी करते हुए, मानो आप भोजन कर रहे हैं, तो आप कैसे याद करेंगे, पिता शिव बाबा आओ मेरे साथ भोजन करो, मैं आत्मा इस शरीर को भोजन दे रही हूँ विश्व की आत्माओं की सेवार्थ। देखो सोच कितनी ऊंची है। जब इतनी ऊंची सोच के साथ हम उस भोजन को खाएंगे और उस परमात्मा को साथ लेकर के खाएंगे, तो मेरे अंदर में जो वाइब्रेशंस जाएंगे वो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे ना। और जब मेरे अंदर में अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे, तो मेरा शरीर कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से इस योग के अंदर सन्यास योग भी आ जाता है। अब सन्यास योग माना ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, दुनिया में रहते हुए सब कुछ करते हुए विकारों का सन्यास बुद्धि से करना है। पॉसिबल है? हम देखो किसी को याद करते हैं तो भी कैसे याद करते हैं, मन को संकल्प देते हैं वो फला आया नहीं, उसको आना था, फिर हम उसके बारे में दृश्य बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, कि उसको आना था, उसने ये कहा था, लेकिन अब वो आया नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा से भी जब हम बातें करते हैं तो बुद्धि के द्वारा मन को और बुद्धि को उसमें लगाना होता है। तो जब तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझ नहीं थी, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भागती थी। लेकिन जब ये समझ हमारी बढ़ती चली जाएगी तो परमात्मा को याद करना, शिव बाबा को याद करना बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए हम भक्ति में क्या कहते आए, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना बिना तुम्हारे, सारे रिलेशन हमने उसके साथ कह दिए, isn't it? तो इसलिए इस योग के अंदर दुनिया के जितने भी योग हैं वो सारे योग समाए हुए हैं। इसलिए हम इस योग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राज योग कहते हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, दो चीजों का जोड़। जैसे कन्या की संयोग वो कर देते हैं, एंगेजमेंट कर देते हैं, तो हम कहते हैं इनकी क्या हो गई, संयोग से योग हो गया, कनेक्शन हो गया, बोलते हैं ना हम लोग। दो जमा दो भी क्या होता है, योग होता है, जोड़ होता, माना एडिशन, कुछ उसमें पावर आ रही है। तो इसी तरह से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ तो वो भी क्या है, योग है, वो भी योग है। और योग माना याद भी, सरल रूप में हम उसको याद भी कह सकते हैं। याद करना है जैसे अपने फ्रेंड को याद करते हैं, आप यहां बैठे हैं, सपोज करो आपकी बुद्धि सुनने में नहीं है तो आप हो सकता है अपने घर को देख रहे हो, यहां बैठे बैठे घर के बारे में हम सोच रहे हो, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो ये हो सकता है। तो इसलिए इस योग को हम लोग राजयोग कहते हैं। तो कनेक्शन, रिलेशनशिप, इसमें हमारा संबंध बहुत अच्छा जुड़ता है परमात्मा के साथ। जितना मैंने उसके साथ संबंधों का अनुभव किया उतना मुझे प्राप्ति जीवन में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए ये राजयोग सबसे ऊंचा योग है, इसीलिए हम इसे राजयोग कहते हैं, मास्टर ऑफ ऑल योगास, किंग ऑफ ऑल योगास। जैसे ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि, उसको हम क्या कहते हैं, राज ऋषि बोलते हैं ना। राजा का बेटा क्या कहलाता है, राजकुमार। तो इसी तरह से योगों में सबसे बड़ा योग क्या है, राजयोग। तो हम सभी यहाँ किस लिए बैठे हैं, राजयोग की शिक्षा लेने के लिए, जो हाईएस्ट है और जिसके द्वारा हम हाईएस्ट बन जाते हैं। इस योग के द्वारा हम अपनी सेंसेस पर, हम कहते हैं ना मुंह से बात निकल गई, सोचा तो नहीं था मैंने बोल दिया, मेरा मतलब तो ये नहीं था, लेकिन बात तो निकल गई, दूसरे को तो बुरा लग गई, भले मैंने उस चीज को रियलाइज कर लिया, लेकिन जब दूसरे को कोई बात लग गई तो उसके जीवन में क्या हो गया है, उसके जीवन में तो नुकसान हो गया ना। तो ये सब चीजों पर मेरा कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मेरा अपने ऊपर कंट्रोल पैदा होना शुरू हो जाता है, उतना ही हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं, संबंध जो हैं, वो सबके साथ अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर को हील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अब देखो तीन तरह का कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि भगवान को जब हम याद करते हैं तो उसमें मन को लगाना होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते आए, बाहरी मीन्स अडॉप्ट करते आए। क्या अडॉप्ट किया, कि हमने एक टिप ऑफ द कैंडल, एक हमने मोमबत्ती ले ली, सामने रखा, उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की। तो शुरू में तो हमने उसको देखा, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, देखते देखते धीरे धीरे माइंड कहीं और खिसक जाता है। जैसे माँ बाप के केस में होता है ना, माँ के साथ बच्चा खेल रहा है और माँ के साथ बैठा है, माँ अपने काम में व्यस्त हो गई तो क्या हुआ, बच्चा खिसक गया। फिर माँ कहती, ओ बच्चा कहाँ चला गया। तो मन को भी हम क्या कहते हैं, बेबी बोलते हैं ना, मन को घोड़ा भी बोला जाता है, मन को बेबी भी कहा जाता है। तो मन भी ऐसे ही क्या होता है हमारा, खिसक जाता है। तो अब जो चीज खिसक जाएगी उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार लाना पड़ेगा ना, यही करते हैं ना। बच्चा कहीं चला गया तो क्या करते हैं हम उसको, ओ तू कहाँ चला गया, तू इधर आ बैठ, नहीं बैठता फिर हम उसको समझाते कि देख तू उस तरफ जाएगा ना, वहां पे कुछ है। तो फिर क्या होता, बच्चा धीरे धीरे आने लगता है। तो इसी तरह से राजयोग में हम लोग अपने मन पर ध्यान देते हैं। अब दुनिया में लोग मंत्र का भी जाप करते हैं। मंत्र किसको कहा जाता है, जिससे मन को त्राण मिले, मन शांति मिले। पहले लोग क्या किया करते थे, कंसल्टेंट के रूप में मंत्री को रखा करते थे ना, रखते थे कि नहीं रखते थे। तो ये एक सलाह के लिए हम अपने आप को एक सुझाव देते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, ओम नमो शिवाय भी हो सकता है, ओम शांति भी हो सकता है, कोई ना कोई थॉट हो सकता है। लेकिन क्या होता है, आप इस चीज को भी रियलाइज करें कि अगर सपोज करो आपने बार बार राम 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 बोलना शुरू कर दिया, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय बोलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो बोलते बोलते क्या होगा, ये बोलता रहेगा। और माइंड को कोई क्रिएटिव कुछ नहीं मिल रहा, माइंड को कुछ क्रिएटिव नहीं मिल रहा, तो माइंड क्या करेगा, भाग जाएगा। जैसे एक बच्चे को आपने अपने पास बिठा लिया, उसको कहा तू बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, तो क्या करेगा वो, थोड़ा जब तक वो बोल रही है माँ तब तक डरता तो रहेगा और बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही माँ की आंख इधर हुई भाग जाएगा। यही आज हमारे साथ हो रहा है कि मन को हम सही तरह से जो होमवर्क देना चाहिए वो हम मन को नहीं दे रहे हैं, और ना देने की वजह से हमारा जो मन है इधर उधर आज भाग रहा है। तो अब देखो तीन तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक होता है कि मैं कुछ बोलती हूँ, मैंने कुछ बोला, जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सब क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। दूसरा जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि मैं कुछ करती हूँ और आप उसको देखते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं ना। जैसे मैंने झूठ बोल दिया, माँ बाप घर में झूठ बोल देते हैं, तो बच्चे उसको क्या करते हैं, देखते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है मैं कुछ सोचती हूँ और वो आपके पास पहुंचता है, आप उसको कैच करते हैं, इसको टेलीपैथी कहा जाता है। दिस इज द हाईएस्ट कम्युनिकेशन, हाईएस्ट कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन कब होता है, जब हमारा माइंड एकदम शांत होता है, क्योंकि कैच नहीं कर पाएंगे ना। जैसे टेलीफोन में अगर बाहर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो क्या होता है, वायर्स हिल जाती है, और वायर्स हिलने से क्या होता है, हमारे पास सही तरीके से बात नहीं आते, हम कहते बड़ी डिस्टरबेंस है। तो इसलिए हाईएस्ट कम्युनिकेशन थॉट का थॉट के साथ है। इसलिए भगवान के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मन को हम विचार देते हैं, क्योंकि मन किसका नाम है, क्या बताया था फर्स्ट लेसन में, मन किसका नाम है, विचार शक्ति का, विचार शक्ति का। ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो राजयोग नहीं हो पाएगा। तो मन है हमारी विचार शक्ति का नाम। तो हम लोग स्वयं को विचार देते हैं, विचार देने से क्या होता है कि फिर मेरा उस पर विचार चलने लगता है, और बुद्धि के द्वारा जब उसका दृश्य बनाते हैं तो मेरा मन फोकस होने लगता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो एक साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें ये बात देखी गई कि एक किसी व्यक्ति को जो बॉम्बे में बैठा था, उसके जो ब्रेन है उसके इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और एक दूसरे देश में व्यक्ति बैठा था, उस बैठे हुए व्यक्ति के ब्रेन के भी ब्रेन को भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ताकि वो ब्रेन वेव्स को स्टडी कर सके। अब जो इंडिया में बैठा था उसको कहा गया कि तुम वहां के लोगों के बारे में कुछ सोचो। अब जैसे ही उसने कुछ सोचना शुरू किया तो जो इसके स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ, सेम डिस्प्ले जो दूसरे देश में बैठा था उसके स्क्रीन पर भी आया। हम बहुत बार जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं, बच्चे की याद आ रही है, बड़े लगता है बच्चा मुझे याद कर रहा है। तार मन की मन से मिलती, जहां पे क्लैरिटी होती है, जहां रियल लव होता है, वहां पे हमारी आवाज पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। कितनों ने अनुभव किया, कितनों ने अनुभव किया? अच्छा, बच्चों ने भी किया है। अच्छा तुमने कैसे अनुभव किया? मम्मी के साथ, कि जब तुम मम्मी को याद करती हो तो मम्मी भी तुम्हें फोन कर लेती है, बात कर लेती है, पूछ। हम सब इस चीज के अनुभवी हैं। तो ये है हाईएस्ट कम्युनिकेशन एंड विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन आवर माइंड इज क्लियर। मन एकदम शांत है, जैसे ही मेरा मन शांत है तो मन शांत में हमें बहुत अच्छी अनुभूति होती है। तो इसीलिए कहा गया, भक्ति में हमेशा ये बात कही गई कि तू अपने मन को मेरे में लगा। लेकिन मन क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं थे। इसलिए परिचय इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज आती है? भाई, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है? अच्छा, और अच्छा, आप वहां से? ओ, उत्तर प्रदेश से, मैं भी उसी से हूँ। इस गांव के? अच्छा, आप भी इस गांव के? मैं भी इस गांव का हूँ। तो क्या होता है, हमारी बॉन्डिंग, हमारा संबंध और स्ट्रांग बनता चला जाता है। तो परिचय जो है ना, वो क्लैरिटी के साथ होना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। मानो अगर मेरे घर के पास कोई पड़ोसी रहता है और वो बहुत बड़ा व्यक्ति है और मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, कल को कोई बताता है मुझे, अरे तुझे मालूम है तेरे पड़ोस में कौन रहता है? कहते नहीं, कोई होगा। तेरे तेरे को नहीं पता ये कौन है? इसके यहाँ तो लाइन लगी रहती है लोगों के मिलने की। ते अच्छा, ऐसा होता है? तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो उसको बताते हैं कि ये तो वो व्यक्ति है। तो वो भी कोशिश क्या करेगा, फिर उससे मिलने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से मुझे पता लगा कि वो मेरा पिता है। अब पिता को मुझे अनुभव करना है, वो मेरी माँ है, मुझे उसको अनुभव करना है, वो मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको अनुभव करना है। तो जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक उसके साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो परिचय के बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो संबंध की आती है, रिलेशनशिप। अब उसको पता तो लग गया कि मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है, लेकिन अब वो क्या करेगा, रिलेशनशिप उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। भाई, बार बार देखेगा, आ रहा है जा रहा है, मैं कैसे उससे मिलूं, कैसे मैं उसको नमस्ते करूं, कैसे मैं उसको हेलो करूं, मैं उसको जाके कैसे बताऊं कि मैं यहां पर रहता हूं। होता है कि नहीं होता? हम इस तरह से करते हैं। तो आप परमात्मा के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये 3 दिन काफी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो एक केवल इंट्रोडक्शन दी जा रही है, लेकिन उस इंट्रोडक्शन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए उसके लिए क्या करना होगा? वहां जब जाएंगे तो वहां सेंटर के साथ कनेक्ट होना होगा। वहां जाके जब आप डेली जाएंगे और आपको कुछ थॉट्स मिलेंगे जिससे आत्मा की पालना होगी, तो आपको ये अनुभव होगा कि यस, वो मेरी माँ है। जैसे माँ बच्चे को पालना देती है, इसी तरह से शिव बाबा माँ बन करके मुझे पालना दे रहा है। अंदर में चीज महसूस होगी, वो मेरा पिता है, पिता के नाते से वर्षा देता है, कौन सा? पवित्रता, सुख और शांति का। तो अंदर में पवित्रता बढ़ती जाएगी। पवित्रता कैसे बढ़ेगी? हमारे जो गंदे गंदे संस्कार हैं, हम झूठ बोल देते हैं, लोगों को चला लेते हैं, धोखा दे देते हैं, इरिटेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो आया मुंह से बोल दिया, इन सब चीजों में बदलाव आने लगेगा। तो ये जब हमारे जीवन के अंदर बढ़ने लगता है तो हमें लगता है कि यस वो मेरा पिता भी है। रिलेशनशिप को अनुभव किया जाता है। जैसे देखो कि अगर एक घर में बच्चा है, उसकी मदर की डेथ हो गई सपोज करो, तो उसका फादर क्या करता है, उसको क्या करता है, मां की भी पालना देता है, देता है कि नहीं देता। और बच्चा ये अनुभव करता है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, वो जैसे मम्मा मुझे प्यार से खाना खिलाती थी, ऐसे ही मेरे फादर मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं, मुझे पैक करके देते हैं। ही प्लेज अ वेरी गुड रोल ऑफ मदर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम ऐसे। इसी तरह से बच्चे के मन की बातें अगर वो बहुत अच्छी तरह से सुन लेंगे तो हम क्या कहते हैं कि माई फादर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे मन की जो भी बात होती है वो मैं किससे शेयर करता हूं, अपने फादर के साथ। तो ये अनुभव करने के, इसमें मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं है, है इसमें मेल और फीमेल बॉडी की बात, ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, इजंट इट, जिसको हम अंदर से महसूस करते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, उसका जो तरीका है कि एक संकल्प मैंने क्रिएट किया अपने बारे में, क्या कि मैं कौन, मैं एक आत्मा, तो मेरी बुद्धि में दूसरा क्या आया कि मेरा पिता कौन, परमात्मा, मैं ज्योति बिंदु तो मेरा पिता भी ज्योति बिंदु, तो हमारे आपस में फ्रीक्वेंसीज मैच होने लगती हैं। अब एयर के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, सारी फ्रीक्वेंसी, अब किस फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। जब हम लोग अपने घर के अंदर टीवी में कोई चैनल चलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जब वो वेवलेंथ मैच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो हमें चैनल संस्कार चाहिए, जी टीवी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी भी कहाँ है, एयर में है, क्योंकि थॉट क्या है, एक्चुअली थॉट इज ए वाइब्रेशन, थॉट एक एनर्जी है जिसके लिए कहा जाता है विच ट्रेवल्स विद द स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इतना ऊंची उसकी स्पीड है, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरी हर घड़ी एयर के अंदर फैल रही है। इसी तरह से दूसरे के भी फैल रही है, संत महात्माओं की भी फैल रही है, परमात्मा की भी एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन अब जो जिसके साथ कनेक्ट करना चाहे वो चॉइस किसकी है, वो हमारी अपनी चॉइस है। अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं वो ये करती है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो हमारे मन वैसा हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। तो रिलेशनशिप जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बार बार बात करनी पड़ेगी। जैसे किसी पड़ोसी से हम रिलेशनशिप जोड़ने के लिए हमें पता लगा, अच्छा आप आ गए, आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, कोई हमें सिखाता है क्या, खुद ही करते हैं ना, अच्छा आज मैंने ये चीज बनाई, हम तुम्हारे लिए लेकर के आए, आप टेस्ट करना, बताना कैसी बनी, तो क्या होता है हमारी क्लोज बॉन्डिंग होती चली जाती। तो जितना आप सेंटर पर जाएंगे आपकी बॉन्डिंग, सेंटर पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ स्ट्रांग बनेगी, और वो क्योंकि परमात्मा के माध्यम है तो उनके द्वारा स्ट्रांग बॉन्डिंग बनने से जो वो परमात्मा के वर्षन हमें सुनाते हैं तो चारों रिलेशंस का अनुभव हमें होने लगता है जीवन में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 3 महीने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर एक बहुत गहरा परिवर्तन आता है। इसी तरह से जहां स्नेह होता है वहां भी बुद्धि भागती है, भागती है कि नहीं भागती, कहना नहीं पड़ता। अगर किसी के अफेयर्स हो जाते हैं उसको कहा जाता भी प्लीज तुम इसके साथ ज्यादा नहीं बैठो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़का या ये लड़की, कितना ही मना करो लेकिन उनकी आपस में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है कि उनको हर चीज पानी पीते हैं तो उसके अंदर भी वही दिखाई देता है। अब सिखाया तो नहीं किसी ने, स्नेह करने की हमें आदत है, स्नेह को परिवर्तन करने की भी आदत है। अभी बच्चा छोटा है, माँ बाप के साथ अटैच्ड है, उसका रिलेशनशिप और उसका अफेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? माँ बाप के साथ। थोड़ा बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल उसका बन जाता है, तो कहाँ चला जाता है उसकी बुद्धि? फ्रेंड सर्कल में हो जाती है। फिर मम्मी बुलाती भी है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मम्मा प्लीज खेलने दो, खेलने दो, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना है। फिर और बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हम अपना जॉब लग जाती है, पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं, फिर शादी हो जाती, फिर और इस तरह से क्या है, हमारे अंदर में एक परिवर्तन आता चला जाता है। तो अब इतने परिवर्तन हम दुनियावी रीति से तो ले आते हैं, लेकिन अब आत्मा को जो चीज की जरूरत है, पवित्रता, सुख और शांति, कि हम यही चाहते हैं ना जीवन में, सुख और शांति जहां पर है वो ऑटोमेटिकली खुशी तो है ही है। यही हमारे दिल की ख्वाहिश है। आजकल हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं ना। तो इसलिए परमात्मा को याद करने के लिए स्नेह का होना बहुत जरूरी है। वो मेरा दिलवर है। कई लोग भगवान को ना दिमाग से याद करते हैं, उसके लिए दिल की जरूरत, अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए। इसलिए यहां पर राज्यों का मेडिटेशन हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड को बैलेंस करता है। हमारा राइट इमोशन से डील करता है, लेफ्ट लॉजिक से डील करता है। तो हमारा जो ये राज्यों का मेडिटेशन है, ये हमारे जीवन को बैलेंस्ड वे में जीना सिखाता है कि किसी भी काम को करते हो आप अंडरस्टैंड भी करो, समझो भी सही, और समझने के बाद उसको फिर लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखो। तो जहां प्यार से किसी काम को करते हैं तो वो चीज दिखाई पड़ती है कि नहीं? यहां भोजन खिला रहे हैं आपको, कैसे खिला रहे हैं? पक्का हैं? प्यार से खिला रहे हैं, बच्चे भी महसूस कर रहे हैं प्यार से खिला रहे हैं, तो पता लगता है ना, महसूसता आती है ना अंदर में। तो इसी तरह से जब अंदर ही अंदर हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर चौथी बात है प्राप्ति। जहां प्राप्ति होती है ना वहां भी बुद्धि भागती है। हम लोगों ने क्यों इस लाइफ को अडॉप्ट किया? हमें क्या था? कोई कमी तो नहीं थी जीवन में, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें ये जीवन अच्छा लगा क्योंकि हमें लगा बहुत प्राप्ति है इसमें, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, आपका मन अच्छा बन जाएगा। जो एकदम कुरूप बन गया, काला बन गया, नेगेटिव सोचने लगा, अगर वो अच्छा मन बन जाता है और अनेकों के जीवन को बदलने के काम आ जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? तो इसलिए सोचा कि हम इस लाइफ को अडॉप्ट कर लें। तो प्राप्ति जहां होती है वहां पे मन भागता है। अभी आपको पता लग जाए, आप यह योग शिविर में आए हुए हैं, आपको पता है कि मेरी एक बिजनेस डील आज ही होने वाली है, आप इसको भी मिस कर देंगे सेशन को, और कहां भागेंगे? बाहर। आज तो मुझे टेलीफोन सुनना है, उसने मुझे कहा इतने बजे टेलीफोन करना, वो मुझे यस और नो का जवाब देगा। बुद्धि भागी क्योंकि वहां प्राप्ति होनी है। तो इसी तरह से राज्यों के द्वारा हमें जीवन में वो प्राप्ति होती है जो हमें कहीं नहीं हो सकती, इवन जंगल में भी नहीं हो सकती। तभी तो देखो सन्यासी लोग जाते हैं, तप करते हैं, फिर कहाँ आ जाते हैं? फिर गृहस्थियों के बीच में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो इसीलिए आ जाते हैं कि बाहर में जो प्राप्ति लाइफ में होनी चाहिए वो उनको नहीं होती है। तो इसलिए ये चार बातें जो है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, ये चारों बातें राज्यों का आधार है, फोर पिलर्स हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसका बेसिस होता है ना। हम कोई पढ़ाई स्कूल के कॉलेज के अंदर हम पढ़ते हैं, कोई कोर्स उठाते हैं, तो उसका कोई बेसिस होता है कि भई ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप जो है ऐसा बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब हम ये चारों चीजों को, चार बातों को अपने लाइफ के अंदर एडॉप्ट करते हैं और बेसिस बनाते हैं कि मेरे को परिचय भी पूरा है, मेरा उसके साथ सारे संबंध है, उसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, और साथ में हम लोग उसके साथ स्नेह रखते हैं, और फिर प्राप्ति मुझे उससे क्या होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में चेंज आता है। और इतनी खुशी बढ़ जाती है जो हमें लगता है कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो अब ये राज्यों का मेडिटेशन हम करें कैसे? एक कहावत है, जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। अभी मैं आपको कहती हूं कि आप अपने घर में चले जाओ, बुद्धि से गेट खोलो, सूट के अंदर रख दो, अपने किचन में जाओ, गैस जलाओ, चाय बना लो, पी लो और फिर बाथरूम में नहाने के लिए चले जाओ। फिर यहां के बारे में सोचो, कर पाए? कर पाए? बुद्धि कहीं गई? कहां गई? जो बताया था वही किया, बिल्कुल गया ना, क्लैरिटी थी, उसको कई बार देखा है, इसलिए फटाफट फटाफट बुद्धि, इसका मतलब बुद्धि क्या काम करती है? देखने का काम करती है ना बुद्धि, देखने का काम। अब क्या है यहां पर और वहां पर, क्या अंतर है इस योग में और उस योग में? क्या फर्क हुआ कि उसकी हमें बहुत प्रैक्टिस है, उस चीज को हमने बहुत बार देखा, अपनी रसोई को भी देखा है, घर को भी खोला है, पैकिंग भी हमने कई बार की है, बाथरूम में भी डेली हम घुसते हैं, तो उससे क्या हो गया, उस चीज की तो हमको प्रैक्टिस है, लेकिन इस चीज को हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, इस चीज की हमें मेमोरी नहीं है, हमारी मेमोरी फेड हो गई है। तो इसलिए राज्यों का मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस मेमोरी को इमर्ज करते हैं। जैसे कोई देखो बच्चा होता है जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको, सुन बेटा तुझे पता मैं तेरा फादर हूं, तू मुझे पापा बोलता था बड़े प्यार से, मैं तेरा फादर हूं जो तेरे लिए आम लेके आता था, तेरे को बाजार में घुमा के लाता था, आइसक्रीम खिला के लाता था। तो बच्चे को क्या होता है, वो चीज याद आने लगती है। तो इसी तरह से सब कुछ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, लेकिन वो फाइल नीचे दब गई तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। अब ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो कुछ मेरे पास था वो मुझे स्वयं को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आप कहेंगे मैं तो हूं ही नहीं, तो कैसे, बोल तो देंगे लेकिन अंदर से मन क्या कहेगा, तुम तो है ही नहीं शांत स्वरूप, तुम तो सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हो। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। मैं थी कभी, लेकिन अभी मेरी डेविएटेड नेचर कैसी हो गई है, गुस्सा करने की, इरिटेट होने की। तो अगर अब मैं फिर से शांत स्वरूप बनना चाहती हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही सोचना पड़ेगा, जैसा सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। इसलिए अगर मैं ये कहूंगी कि नहीं मैं तो बहुत खराब हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो कपटी हूं, हम लोग आरती में क्या बोलते हैं, यही तो बोलते आए ना। तो इसलिए जब हम लोग ये चीजें बोलते आए तो बोलने से क्या हो गया, मेरी एनर्जी डाउन चली गई, बहुत लो फील करने लगे, क्योंकि उसमें डिस्टेंस बढ़ता चला गया। सो द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड स्पिरिचुअलिटी इज दिस ओनली, कि हम लोग क्या होता है, प्रेयर में हम भगवान के बारे में गाते रहते हैं, कहते रहते हैं, रिलीजन में हम लोग ब्लाइंड फेथ से चल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। तो जहां किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पर हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरह से राज्यों का मेडिटेशन करने के लिए जब हमने कहा आप कौन, तो आत्मा का इमेज बनना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं, तो मन को ये संकल्प देंगे और बुद्धि के द्वारा उसका दृश्य बनाएंगे। शुरू में हो सकता है बहुत शांति का अनुभव ना हो, क्योंकि इस जस्ट द बिगिनिंग। पर बार 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 उस चीज को रिकॉर्ड करते जाएंगे तो क्या होगा, ओल्ड फाइल्स रिप्लेस हो जाएंगे किससे, न्यू फाइल से। और जैसे ही मेरी ओल्ड फाइल्स रिप्लेस हो जाएंगे न्यू फाइल से, तो हमारे अंदर में ऑटोमेटिक ये गूंजने लगेगा कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर याद नहीं दिलाना पड़ेगा, शुरू में कॉन्शियसली हमें अपने आप को विचार देना पड़ेगा। तो जहां पर मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे, मन और बुद्धि एक दिशा में हो जाएंगे, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। इसलिए राजयोग में सबसे इंपॉर्टेंट है मन को विचार देना और फिर उस विचार को देखना। कई लोग कहते हैं ना, हमारा स्टडीज में भी फोकस नहीं होता, भगवान को याद करने बैठते हैं तो भी हमारा फोकस नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि मन को हम विचार देते हैं पर थोड़ी देर के बाद वो भी भाग जाता है और बुद्धि उसका दृश्य बनाती ही नहीं है। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो मिलाप कैसे होगा? और जब तक मिलाप नहीं होगा, योग नहीं होगा, तब तक कोई अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम जब राजयोग करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको विचार दूंगी, क्लियर, मैं आपको एक विचार दूंगी, आप वो विचार स्वयं को देंगे। इसीलिए हम स्लो देते हैं ताकि मैंने विचार दिया, आप तक पहुंचा, आपने उसको सुना, सुनने के बाद उसको स्वयं को दिया, देने के बाद उसका बुद्धि से दृश्य बनाया। अब दृश्य बनाएंगे तो फिर शुरू में फेडेड होगा, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत क्लैरिटी से बनता चला जाएगा। अगर मैं कहूं घर, तो घर किसका घर, शिव बाबा ने का जो घर है, जो मेरा आत्मा का घर है, वो घर इमर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये बुद्धि की एक्सरसाइज है, बुद्धि की एक्सरसाइज है। जितना हम बुद्धि की इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो बहुत अच्छे से फोकस होने लगता है। ठीक है, और जब हम इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में पावर्स आ जाती हैं। जो देवियों को आठ भुजाएं दिखाई जाती है ना, तो किस चीज का सिंबॉलिक है, कहते हैं ना, कोई किसी के काम में बहुत अच्छा सहयोग दे तो हम बोलते हो यू आर माई राइट हैंड, आपके बिना तो मेरा ये काम हो ही नहीं सकता। कभी किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करनी हो तो भी हम हैंडशेक की बात करते हैं ना, हैंड इन हैंड की बात करते हैं। तो ये हाथ जो है, ये किस चीज का सिंबॉलिक है, पावर का सिंबॉलिक है। कोई शादी भी करनी होती तो कहते तुम मेरे काम में हाथ बटाना, तो ये पावर का सिंबॉलिक है। इसलिए भगवान की याद से, शिव बाबा को अपना बनाने से, उसके साथ रिलेशनशिप जोड़ने से, जो डे टू डे लाइफ के अंदर हमें पावर्स चाहिए, चाहे वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, चाहे समेटने की शक्ति है, सहन करने की है, समाने की है, निर्णय करने की है, सामना करने की है, सहयोग की है, ये सारी शक्तियां हमारे में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। कई बार हमको कहते हैं आप लोग इतनी सेल्फलेस सर्विसेज क्यों करते हो, हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर करके, हमें ये पता है कि आप हमारे संबंधी हो, हम सब एक पिता की संतान हैं। हमने उसको रियलाइज कर लिया तो हमें लगता है कि अपनों को तो देना चाहिए ना, तो सारा विश्व हमारा अपना हो गया। लेकिन आपके मन में वो नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज आएगा। ठीक है, और जहां जिसके पास पावर होती है, फिर पावर के बेस पे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, फिर तो दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास पावर है वो जो चाहे वो कर सकता है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, जो मैं विचार दूंगी वो आप स्वयं को देंगे, उसको देखेंगे, दृश्य बनाएंगे। ठीक है, ना भी बने तो घबराना नहीं। शुरू शुरू में दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि मन को बाहर भागने की बहुत आदत है, इसमें बहुत किचड़ा भरा हुआ है, तो इसलिए उस किचड़े को साफ करना, बहुत ज्यादा जमा हुआ किचड़ा साफ करने में टाइम लगता है। आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर विचार दे स्वयं को, ये मेरा समय, मेरे अपने लिए है, केवल अपने लिए। मुझे अपने इस समय को सफल करना है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान इस रूम से हटाते हुए और शरीर से भी हटाते हुए प्रकृति के बीच में फोकस करें। विचार दें स्वयं को, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, देखें अपने स्वरूप को, चलते हैं अपने घर परम धाम। महसूस करें मैं आत्मा अपने घर परम धाम के नजदीक हूं। चारों तरफ लाल सुनहरी रंग का प्रकाश है। यहां मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में हूं। जो ज्ञान सूर्य हैं, उनके प्रकाश और शक्ति की किरणें मुझात्मा को शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे सूर्य की किरणों से विटामिन मिलता है, शिव बाबा के सानिध्य का अनुभव करें। और लौट आए अब अपने घर में चले जाएं। सबको आत्मिक स्वरूप में देखें, महसूस करें, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। मैं आत्मा हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूं। तंतु कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं। लौट आए वापस ओम शांति।